संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बितरे हमारे हैं। अलंग की चर्चा आरंभ की है तो जो अपन समझते हैं कि बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। मैं आज ही ये कोशिश करूंगा कि आपको महसूस हो कि बहुत सरल है। अलिंग ग्रहण शब्द में तीन शब्द हैं, आ एक लिंग और एक ग्रहण। तो ग्रहण का अर्थ है जानना, जानता है नहीं, जानता हूं नहीं, जानेगा नहीं, बल्कि सिर्फ जानना। पहले दिन मैंने संकेत किया था कि टू गो, मैंने वो क्रिया का मूल रूप जिससे कि हम उसे चाहे जिस तरफ ढाल सके। इसीलिए तो ग्राही की जगह ग्रहण रखा है। तो ग्रहण माने है जानना। बीसों बोलों में ग्रहण का अर्थ जानना ही है। तो एक काम तो बहुत सस्ता निबट गया। और अलिंग में जो आ है उसका अर्थ है नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो ये भी बीसों छंदों में, बीसों बोलों में एक ही अर्थ है इनका। अब अगर जो लिंग शब्द है उसके बीस अर्थ हैं और इसकी वजह से बीस बोल बन गए। और हमको क्या करना है, तो लिंग शब्द के बीस अर्थ समझ लेना है कि याद कर लेना है, समझ दो तो बस बीस बोलोगे कितने बढ़ गया झगड़ा है, कौन सा लंबा काम है। यदि बीस मीनिंग याद करना पड़ते हमें अंग्रेजी के, संस्कृत के, तो 40 शब्द याद करना पड़ते, क्योंकि बातर माने पानी, तो बातर भी याद करना पड़ा और पानी भी, समझ नहीं आया। 40 शब्दों को याद करना पड़ता, लेकिन यहाँ तो 20 बोल याद करने हैं तो सिर्फ 21। लिंग शब्द तो मूल में है ही और तो उसके 20 अर्थ हैं। तो समझ लीजिए कि एक बालक के लिए जैसे 20 मीनिंग याद करना है उससे भी सरल काम है। आप जानते हैं कि पुराने जमाने में संस्कृत भाषा में जैन आचार्यों ने, अजैन आचार्यों ने भी शब्दकोश लिखे हैं। आजकल ये डिक्शनरी नहीं, नाम माला है, अमरकोश है, ये नाम आपने सुने हो तो उसमें दो तरह के प्रयोग होते हैं। एक तो एक वस्तु के अनेक नाम, उसको बोलते हैं नाम माला। जैसे पानी नाम का एक पदार्थ है, उसको पानी कहना, जल कहना, तोय कहना, ऐसे 10-20 नाम उस पानी को बताने वाले हों तो उसका वर्णन जिसमें हो उसको बोलते हैं नाम माला। बनारसी दास ने नाटक समय साल में शुरू में दिए ना, पुण्य के पाप के, पुण्य का ये कर दिया है अकल रोग, पाप का ये कर दिया है कंप रोग, है क्या। पुण्य शब्द का एक अर्थ क्या है, अकल रोग। अकल रोग क्या है, नाम सुना कभी, ये वो टिटिनिस होता है जिसमें आदमी ऐसा अकड़ जाता है, हिलता नहीं, समझे ना। तो कहते हैं पुण्य के उदय में जीव अकड़ जाता है, सीधा रहता ही नहीं है, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। इसलिए आचार्यों ने उसका एक नाम रखा अकड़ रोग। अकड़ रोग माने अकड़ रोग। और पाप का एक नाम रखा कंप रोग, क्योंकि पाप के उदय वाला इतना घबरा जाता है कि कांपने लगता है, इसलिए उसका नाम रखा कंप रोग। ये भी आपका पाप की संत हो जाता है, हाजा से कांपने लगता है। समय सार की बात है, ये भी समझना है, यहाँ और गप्पें सुना रहा हूँ। इस समय सार नाटक में शुरू में जो छंद आते हैं उनमें ये है, पुण्य का ये नाम, पाप का ये नाम, तो उसे बोलते हैं नाम माला। और एक होती है अनेकार्थ नाम माला, नाम माला और एकांत नाम माला में क्या फर्क है तुम्हारी? एक वस्तु के अनेक नाम, उसका नाम नाम माला, और एक शब्द के अनेक अर्थ, उसका नाम अनेक अर्थ नाम माला। जैसे बोला ना अभी पानी के लिए हमने कहा वाटर कहा, तोय कहा, जल कहा, नीर कहा, ये तो नाम माला में हो गया। अब क्या कहें? गो, तो गो माने ग्राय, गो माने दिनवाणी, 11 अर्थ होता है, गो शब्द के 11 अर्थ है, तो गो हो गया अनेक अर्थ। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि लिंग शब्द है वो अनेक अर्थ नाम माला का विषय है, बस उसमें 20 उसके अर्थ हैं, वो 20 अर्थ हम समझ लें तो 20 बोल हमारे लिए बिल्कुल मतलब 5 मिनट में याद हो सकते हैं। अब अपने पास यहाँ ज्यादा समय नहीं रहा, जैसे मैं 2-3 दिन के प्रवचनों में ही बिल्कुल 20 को पानी जैसा कर देता, कोशिश करूंगा कि अपना जो प्रशिक्षण शिविर आ रहा है ना उसमें शुरू के 2-4 दिन इसकी बाकी रहे हुए विषय को मैं पूरा स्पष्ट करूँ, है ना। विकल्प अभी अभी आया इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन बहुत आपको अंदाजा लग गया होगा ना कितना सरल काम। अलिंग ग्रहण, आ माने नहीं और लिंग माने 20 अर्थ, अब कौन कौन से भाई बताएंगे, और ग्रहण माने जानना। अब देखिए पहला अर्थ क्या है कि ये भगवान आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने का काम नहीं करता। लिंग माने इंद्रिय, पहला अर्थ है क्या है? अपन बोलते हैं ना आत्मा के पहचान के चिन्ह को इंद्री कहते हैं, बालगोद पाठमाला भाग 3 में जो इंद्री वाला पाठ है उसमें लिखा कि नहीं लिखा कि आत्मा के पहचान के चिन्ह को इंद्री कहते हैं। देखो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्री कहलाती है ना, और एक और है पुरुष के पहचान के चिन्ह को भी इंद्री कहते हैं, कहते हैं उसे लिंग भी कहते हैं, उसे इंद्री भी कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते। तो पहचान के चिन्ह का नाम लिंग है, और चूंकि इंद्री को आत्मा के पहचान का चिन्ह माना जगत में, इन 5 इंद्रियां जिसमें है तो वो जीव है, 5 इंद्रियां नहीं है तो वो अजीव है, आंख कान नाक है तो वो जीव है। तो वो ये कहते हैं ये भगवान आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने का काम करता ही नहीं है, माने इसके जानने के काम में इंद्रिय लिंग नहीं है, माने इंद्रिय कारण नहीं है, इंद्रिय साधन नहीं है, हैं? तो इससे क्या सिद्ध हो गया, ये भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। चला चलिए क्या लगा, किताब खोल के देखो कि इससे आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है ऐसे अर्थ की सिद्धि होती है। क्या कहते हो, जहां अलिंग ग्रहण कहना है वहां जो अलिंग 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 ग्राही कहना है वहां जो अलिंग ग्रहण कहा है वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति करने के लिए है। वहां इस प्रकार है, ग्राहक माने ज्ञायक, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा हो गया ना, लिंग माने इंद्रिय हो गया, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण माने जानना नहीं होता, माने इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम नहीं करता, ये इसकी भाषा है। भाषा इसकी इतनी टेढ़ी है, हिंदी भी इतनी टेढ़ी है कि अच्छों अच्छों को पसीना छूट जाए, कि जिसके इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, जिसके किसकी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी भाषा बहुत सीधी कर दी कि किसी के प्रश्न की जरूरत नहीं रहे, और आप 20 बात पढ़ें और 20 बोल आपको याद दिलाए। लिख रहा हूं अभी समय साल की जो टीका मैंने लिखी है वो आपके हाथ में आने वाली है 10-5 दिन में, उसमें भी मैंने यही प्रयत्न किया है। आप उसके लिए एक करके देख के पढ़ना कि जो भी गाथा का अर्थ आपको समझना है पहले आप अपनी पुरानी हिंदी गुजराती से पढ़ना, खूब माथा मार लेना आसानी से। और गुरुदेव के वचन तो आपने सुने ही हैं और इतने दिनों का अभ्यास है, फिर वो मेरी टीका पढ़ना और आपको ऐसा लगे कि इससे कुछ जल्दी समझ में आता है और साधारण लोगों की भी समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों को तुम समय साल पढ़ने की प्रेरणा देते हो तो दो पेज पढ़ के रख देते हैं, ऐसे पढ़ करके यदि वो पढ़ते ही रहें 10-20 गाथाएं पढ़ लें तो समझ लेना कि ये काम की है, मुझे देखा है। बोलो बिल्कुल को देना, तुमने तो इतना अभ्यास किया है तो शायद तुम्हें ज्यादा फर्क मालूम नहीं पड़े। क्यों क्यों बनाई है? इसलिए बनाई, क्योंकि आज ये हमारी वो उतना उतना समय शक्ति भाषा की वो जो कमजोरी है, ख्याल में है ना। अभी इन शब्दों को आप पढ़ो, ऐसे कोई कठिन अर्थ नहीं है, इस अर्थ बहुत सरल है, लेकिन वो भाषा इतनी कठिन है कि हमें भी कभी कभी संस्कृत पढ़ना पड़ता है तो समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। पूछो ना भय कुमार जी से, अब जल्दी भाई से भी पूछो कि हिंदी पढ़ने से समझ में नहीं आती है, संस्कृत पढ़ते हैं तो समझ में आती है, तो समझ लेना कि वो हिंदी कितनी कठिन है। एक क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले तो जयचंदी छाबड़ा की थी 225 वर्ष पुरानी भाषा, वो हमारे पास रखी है हिंदी मूल भाषा है। और फिर उसकी गुजराती की गई और फिर गुजराती की हिंदी की गई। अरे हिंदी से सीधी हिंदी नहीं कर सकते थे, पुरानी हिंदी से सीधी नई हिंदी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये गुजरातियों के हाथ में पड़ गई ना। क्यों? और ये सब छठवीं क्लास पास वाले गुजराती, घबराना नहीं, नाराया मत हो जाना। इसलिए आज मैं बताता हूं कि ये भाषा को समझते ही नहीं, अब उनने वो भाषा बनाई होगी तो कैसी बनी होगी। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको कि एक प्रोफेसर थे, अभी भी हैं भावनगर में, प्रोफेसर शेखर, डॉक्टर प्रोफेसर शेखर जैन। उनसे काम शशि भाई ने काम करवाना शुरू किया, ये अनुवाद का काम गुजराती से हिंदी। तो उनने गुजराती से हिंदी जो 10-20 पेज किए, जो मैं बोला हूँ वो भी जिंदा है अभी, और हीरालाल जी काला जी जिंदा है। तो उनने वो 10-20 पेज किए तो वो इनने सब रिजेक्ट कर दिए, शशि भाई ने और हीरालाल काला ने, कि नहीं है तो नहीं हमारे, क्योंकि उनको वो गुजराती टोन वाली और वैसी भाषा चाहिए थी। ऐसा कर तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे कि मैं PhD डॉक्टर हिंदी का और ऐसी हिंदी लिखूं, तो छठवीं क्लास वाला भी जिससे भी ज्यादा खराब है। इनमें झगड़ा हुआ, तो झगड़ा हुआ तो उसने ये कहा शेखर ने कि ये डॉक्टर भारिल को आप मेरी भाषा दिखाओ और आप अपनी दिखाओ जो आपने सुधा दी, जो वो कह देंगे तो मैं मान लूंगा। और मेरे पास वो आई है घटना, तो मैंने देख के कहा तो उसकी बिल्कुल ठीक थी, कोई अर्थ गड़बड़ नहीं था, और ये जो बताना करवाना चाहते थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा खेमचंद भाई को बताइए, मैंने कहा देखो खेमचंद भाई ये है मामला, क्या करूं मैं, ये मामला एक है, दिखाई खेमचंद भाई को, खेमचंद भाई बोले बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने इनको समझाया शशि भाई को, जयलाल जी को, भाई उनकी सही है तुम कराओ, अच्छा काम है, नहीं आप उसका पक्ष लेते हो, आप हिंदी वाला है ना उसका पक्ष लेते हो। अरे तुम तो मुख्य हो, हमारे साधर्मी भाई हो, तब तो गुरुदेव के भगत हो, वो तो नहीं है, उसे तो तुम पैसा देके कराने वाले हो, मैं उसका काय को पक्ष लूंगा, लेकिन तुमने खैर भी जानने के लिए मेरे पास लाए हो ना, तुम भाषा की दृष्टि से वो ही सही है। अब रही कोई भाव में गलती होगी तो आप देखना, हम देख लेंगे, लेकिन ये तुम कहां, आखिर उन्होंने नहीं मानी, उसे काम नहीं करा। अभी वो आदमी 1.5 साल पहले मुझे अमेरिका में मिला, जाता है हर साल अमेरिका, और उसने ये कहा नीरज जैन से मेरे सामने कि यदि डॉक्टर भारेल की चल गई होती उस दिन सोनगढ़ में तो आज मैं भी डॉक्टर भारेल जैसा पक्का सोनगढ़िया पंडित हो जाता। वो जिंदा है अभी, मैं बोल रहा हूं कैसे जाके उसे सुना देना। लेकिन मेरा इतना अपमान किया गया, मैंने इतना बढ़िया अनुवाद किया था, इतनी मेहनत की थी और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं PhD डॉक्टर हिंदी का और 6वीं क्लास पास वाला पास करे मेरी हिंदी को, समझिए ना। अभी तो ये जो आई वो मक्खी मार, जिसे नीति के कारण हमने भी जब प्रवचन रत्नाकर का शुरू किया ना हिंदी में अनुवाद, हमने अनुवाद भाई तो हमारे साथ भी यही हुआ, बड़े दादा करते थे अनुवाद, मैं उसका संपादन था। तो बार बार कहे हमें ये नीति, हमें आप तो मक्खी का संभाल, मक्खी की जगह मक्खी मार दो। अब क्या होती है मक्खी की जगह मक्खी मारना, समझो हमारे गुजरात में भी मक्खी मर जाती है ना, और वो दो किताब के पेज में बीच में आ गई हो तो उसकी वजह से जब यहाँ पर एक निशान बन जाता है ना, तो बस तुम अपनी गुजराती में आ गई हो तो हिंदी में भी वैसी एक मक्खी मार के निशान बना दो, ऐसा अनुवाद चलिए। तो मेरे पास गुरुदेव जी बहुत कृपा थी मेरे ऊपर, समझे ना, इसलिए मैं पार पा सका। मैंने कहा कि अभी तुम्हें मक्खी की जगह मक्खी मरवाना हो तो किसी दूसरे से काम कराओ, पंडित हुकुमचंद की जरूरत नहीं है। पंडित हुकुमचंद मक्खी से मक्खी मारने वालों में नहीं है, वो पहले यहाँ से लेके यहाँ लाता है पूरा, और उसका भाव समझता है, फिर किताब को बंद करके फिर लिखता है। बोलो, यदि एक ही शब्द में अंतर आ जाए तो मुझे बता दो, जो भाव उसका है वो इसका है कि नहीं है। हर भाषा की प्रकृति न्यारी होती है। आप अंग्रेजी का मक्खी मार हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू बॉम्बे, तो क्या मैं जा रहा हूं बॉम्बे को, ऐसा बोलेगा हिंदी में कोई, ऐसा बोलेगा मैं बॉम्बे जा रहा हूं, बोलो कभी नहीं। अरे हिंदी की टोन अलग है, हिंदी में क्रिया सबसे बाद में लाते हैं, अंग्रेजी की टोन ये है कि कर्ता के तत्काल बाद क्रिया, आई एम गोइंग है ना, और फिर बाद में कहां कैसे, वो बाद में है कि बंबई जा रहा हूं, बाई रेल जा रहा हूं बाद में। और हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में मैं रेल के द्वारा बंबई जा रहा हूं सबसे अंत में आएगा। तुम्हारी गुजराती की टोन अलग है, हमारी हिंदी की टोन अलग है। अब तुम गुजराती की टोन में हिंदी करना चाहते हो और तुम खुश हो तो हम क्या करें। ये अलग कुमार बोलेगा गांधी स्वामी की जय, तो आपको उतना पसंद नहीं आता है, जो गांधी स्वामी नो जय, हाँ खुश हो जाते हैं, क्या करें, इतने में खुश होते हो तुम तो फिर अकल की हमें जरूरत क्या है, पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है। उन बच्चों ने बोल दिया कि गांधी स्वामी नो जय, अरे नो तो बोल गया, नो बोलना तो सीख लिया, क्या बोल गया, नो बोलना सीख लिया, इसमें क्या हुआ। और तुम की सुन लो तो क्या बिगड़ता है तुम्हारे बाप का, गांधी स्वामी की जय रहे तो क्या दिक्कत है। तो ये भाषा की जो ये तकलीफ है उसकी वजह से इसमें ये कठिनता है, और मैंने उस कठिनता को पूरी तरह दूर कर दिया है। जो आपने मेरे से कहा था ना जल्दी में बुक कर देता हूँ, ये रजनी गोसलिया ने भी मेरे से कहा था जब उसने अनुवाद शुरू किया कि हम क्यों अनुवाद कर रहे हैं आपकी हिंदी का अनुशीलन में, हमारी है ना गुजराती, हम उसमें से निकाल के सीधे रख देंगे। तो मैंने उनसे कहा ऐसा करो, पहले तुम 2-3 के हिंदी का गुजराती बनाओ और फिर उस गुजराती से इस गुजराती को मिला, और तुम्हें देसी लगे तो तुम वैसा करना, और कहीं अलग लगे तो फिर तुम सोच रहे ना तुम्हें कैसा करना, तुम दे नहीं कहता मुझसे मत पूछो। अरे भाई हमने इतनी मेहनत करके इसको सीधी सरल की है, और आप अपने थोड़े से आलस के पीछे उसको फिर वही कठिनता के चक्कर में डालना चाहते हो, से क्यों करते हो? तो ये जो है मैंने लिंग शब्द के 20 अर्थ। अब पहला अर्थ क्या था अभी बोलो, इंद्री, लिंग माने इंद्री, वक्त सिद्ध अर्थ है। आत्मा के पहचान के चिन्ह को क्या कहते हैं? इंद्री। पहचान का चिन्ह क्या है? पुरुष को क्या पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो लिंग माने इंद्रिय, और ये भगवान आत्मा इंद्रिय द्वारा नहीं जानता है, इसलिए अलिंग ज्ञान है। इंद्रिय द्वारा जानने का काम ये नहीं करता, माने इसे जानने का काम करने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। यदि ये शर्त लगा दी जाए अनंत भाई कि इंद्रियों की जरूरत है, हमारे तो बिना इंद्रियों के आंखें तो हम बिना देख नहीं सकते ना, तो कहते हुए सिद्ध भगवान ज्ञान से रहित हो जाएंगे, क्योंकि तो उनकी एक भी इंद्रिय नहीं है। इंद्रियां तो संसारी जीवों के होती है, तो फिर वे जानेंगे ही नहीं, फिर उनके ग्रहण माने जानना होगा ही नहीं। अब ग्रहण माने जानना, माने अनंत भगवान, अपन सारे संसारी जीव सिद्ध जीव का जो जानते हैं, जानने की क्रिया होती है, उसमें इंद्रियों की पराधीनता नहीं है। इसका नाम है पहला अर्थ अलंग ग्रहण का। तो इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम्हें इन आत्मा को जानना हो तो ये इंद्रियां काम नहीं आएंगी। कल मैंने कहा था याद हो तो कि ये जो हमारे आंख को कान से हम समय सार पढ़ते सुनते हैं, पढ़ते सुनते हैं ना, तो वो हम आत्मा नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? आत्मा के बारे में जानते हैं। आत्मा जानने के लिए आंख की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत नहीं है, आत्मा के बारे में जानने के लिए जरूरत है। देखो पढ़ते हैं कहा है ना, ग्राहक माने ज्ञायक, जिसके लिंगों द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण माने जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है, माने इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। इस प्रकार आत्मा अतिंद्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अतिंद्रिय ज्ञानमय है आत्मा, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तो पहला हो गया। अब दूसरा बहुत सरल है। अभी क्या कहा था कि आत्मा जानने का काम करे तो इंद्रियों के माध्यम से उसे काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा वो आत्मा जान सकता है। आंख के बिना देख सकते हो मीनू भाई? नहीं देख सकते हो कि नहीं देखे? क्या बात करते हो? नहीं देख सकते तो करो आंख बंद, और फिर देखो अभी प्रयोग करके देखो ना, मतलब समझो करो, आंख बंद करो तो देखने की कोशिश करो, कुछ दिखता है या नहीं दिखता है? नहीं दिखता हो तो बोल, हमें तो कुछ नहीं दिखता है। गुरुदेव श्री के पास भी एक लड़का ऐसा आया था, और गुरुदेव अपने प्रचन में कहा करते थे, जिनने सुना होगा, कि उसने कहा कि आंख बंद करके देख बेटा, तो देखा कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? कुछ नहीं दिखता, अच्छी तरह देख। कि सामने ने कह दिया ना कुछ नहीं दिखता है, बस अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो अंधेरा दिखता है ना भले आदमी, कुछ नहीं दिखता है क्यों कहता है? तो इंद्रियां तो उजेला देखने का साधन हुई, अंधेरा देखने का साधन तो नहीं है ना। और देखना तो दोनों ही को है, दोनों ही को देखना का नाम देखना है कि नहीं? गुरुदेव ने कहा था लड़के से यही बात। तो अब इंद्रियों की आवश्यकता आत्मा को जान, आत्मा जानने का काम करे तो उसे इंद्रियों की जरूरत नहीं है, तो तुझे इंद्रियों की पराधीनता की जरूरत नहीं है। पहला। दूसरा कि आत्मा को जानना हो, फर्क पड़ गया। अभी तो आत्मा जानने का काम करे, अब क्या हो गया? यदि हमें आत्मा जानना हो अपना, तो वो इंद्रियों से जानने में नहीं आएगा। अभी क्या था कि अपना आत्मा पर को जाने तो उसे इंद्रियों की जरूरत नहीं है, अब क्या है कि हम अपने को जाने तो इंद्रियों की जरूरत नहीं है। तो स्वा को इंद्रियों को जानने की जरूरत नहीं है, वो दूसरा बोल, और पर को इंद्रियों को जानने की जरूरत नहीं है, वो पहला बोल। तो है ना, दो हो गए ना, इंद्रियों वाले नहीं, इंद्रिय का अर्थ में निबट गया। इंद्रिय माने लिंग माने इंद्रिय, ग्रहण माने जानना, कि इंद्रियों के माध्यम से जानना आत्मा के नहीं होता है। तो पर को जानना नहीं होता है पहला बोल, और इंद्रियों के माध्यम से स्व को जानना नहीं होता है दूसरा बोल। निबट गया, बुझा गया, खत्म। दो याद हो गए क्या, नहीं तीसरा याद करा दूं? देखो ना, मैं जतीश भाई की मानूंगा ना मैं आपकी मानूंगा, मैं तो 40 मिनट बोलूंगा, क्योंकि मुझे टीवी पर 20 मिनट का एपिसोड जाता है। तो या दो एपिसोड बने या तीन बने, नहीं तो वो काट के फेंक देगा। यदि मैं बोलता ही रहा 40 मिनट बोले तो 2 मिनट काट देगा। अकेला मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ, कम मैं अलग से उसके लिए तैयार करूँ ऐसी फेर, इतना मेरे पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है। अब रोजाना देना है, टीवी पर रोजाना आ रहा, आप लोग देखते हैं ना, यहाँ इतने बैठे इनमें कितने लोग देखते हैं, जरा हाथ उठाना। तो उन तक यही मूल तत्व ज्ञान जो मैं आपको यहाँ सुना रहा हूँ, वही वही पहले शुरू में मैंने 200 एपिसोड तैयार किए थे 25-25 मिनट के स्पेशल, वो सरल, क्योंकि टीवी पर सरल जाना चाहिए। तो मोटानी के आज देखे साहब सरल, हम हमारे काम का तो है नहीं, हमारे काम का नहीं, मैं आपके काम का भी आएगा, पहले जनता को तो देखें दो ऐसे। क्योंकि मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि मैं दो दो अलग अलग करूँ। अब ये सब देता हूँ मैं, कलकत्ते का बना तो वो भी दे रहा हूँ अभी दिया, अभी जो वो मैं कहाँ का चल रहा, अभी जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी चल रही ना कलकत्ता की, वो ही चल रही है टीवी पर, सुन लेना। कलकत्ता की जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रचन हुए थे वो टीवी पर चल रहे हैं, 7:10:20 पर साधना चैनल पर। अरे वो विद्यानंद जी महाराज के साथ जो सीढ़ी बनी ना आपने ली है, वो देखिए, अब उसके बाद वो आने वाली है। तो कोल्हापुर शिविर में जो बने थे ना, उसके बाद वो आने वाले हैं। अब ये देर वाली ना बनेंगे, देर ही जाएंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें 40 मिनट बोलूंगा तुम्हें। क्या बात चल रही है कि आत्मा अलिंग ग्रहण है। अब अलिंग ग्रहण वो कहते हैं कि हमने ये ग्रहण रखा शब्द क्यों रखा, क्योंकि हमको लिंग शब्द के बीच अर्थ करना है, ग्रहण शब्द के बीच नहीं करना, ग्रहण शब्द का अकेला जान नहीं करना है। तो अपने को जानना अपर को जानना, तो इसमें यदि हमको लगा देते अभय जी मैं पर को जानता हूं तो हूं आ जाता जानामी, और पर मुझे जानता है तो जाना थी आ जाता, तो चक्कर पड़ जाता ना। यदि मैं जानामी या जानाती लिख देता तो अर्थ नहीं बदल सकता था, इसलिए मैंने ग्रहण लिखा। तो जानना कि आत्मा को जो जानने का काम है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है, तो पर को जानने का काम इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है, ये पहला अर्थ, और अपने को जानने का काम इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है, ये दूसरा है। तो पहले अर्थ से क्या अर्थ की प्राप्ति हुई कि आत्मा अतिंद्रिय ज्ञानमय है। दूसरे कौन सी क्या अर्थ की प्राप्ति हुई लिखा ना, ग्राह्य ये जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। ये दो अर्थ जो मैंने आपको बताए वो गले उतरे के नहीं उतरे बोलो, फिर कहता हूं घबराना नहीं। उनको तो ये बताना है कि हमें गुरुदेव इसके जो प्रचन है अलिंग ग्रहण के, उसमें एक बहुत मार्मिक बात है जो मैं आपको बताता हूं, अपने नाम से भी बता सकता था लेकिन गुरुदेव के नाम से ही बताता हूं। एक ये अधिकार है ये मत भूल जाना, ये जो गाथा चल रही है ये अधिकार के अंतर्गत चल रही है, समझे ना। 49वीं गाथा जो समय साल में है वो जीवा जीवाधिकार के अंतर्गत चल रही है, तो उससे फर्क पड़ता है। तो वो यही कहते हैं कि ग्रहण माने जानना, तो किसका जानना, कि गे का जानना, ये को जानना, तो वो कहते हैं कि अपना भगवान आत्मा, तुम तो कह रहे हो कि ये आत्मा जानता है, तो ये तो ज्ञाता हो गया, ये ज्ञे नहीं रहा ना। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, ये ज्ञाता रूप से ज्ञे है। इसका अर्थ समझ में आया क्या? ज्ञाता रूप से ज्ञे है का अर्थ समझते हैं क्या? बोलो चेतना में कि ये भगवान आत्मा जानने लायक है, लेकिन क्या जानने लायक है? कि असंग प्रदेशी है ये नहीं, अनंत गुण वाला है ये नहीं, एक ज्ञायक स्वभावी है, एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव वाला है, ये जानना। आत्मा को जानने की, आत्मा जो ज्ञाता है वो जानना, आत्मा को जानने के स्वभाव वाला है ये जानना, इसलिए वो भी हो गया। ये अधिकार की बात हो गई। आत्मा जाने बोलक, आत्मा को हमने जाना, तो क्या जाना तुमने आत्मा को? बोलो कहते पंडित जी हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, क्या जानते हैं आप हम? क्या आप एक नंबर के पॉलिटिशियन कि तुम हमें कुछ नहीं जानते, तुम हमें कुछ नहीं जानते हो, कि क्या क्या जानते हैं? कि आप जैन दर्शन के कट्टर भगत हैं, उसी में लगे रहते हो, अब तुमने नहीं जाना। कि भगवान आत्मा को तुम जानते हो तो क्या जानते हो? कि इंद्रियों वाला है, बल को जानता है, सब ये करता ये करता, कि तुम कुछ नहीं जानते हो। बस ये भगवान आत्मा जानने देखने वाला तत्व है, ये जानते हो कि नहीं? ये जानते हो तो तुम्हारा सच्चा जानना है। ये पहले बोलता है कि आत्मा को कैसा जानो? ज्ञायक। आत्मा को कैसा जानो? जानने वाला। देखो लिखा ना, कहा लिखना, ग्राहक माने ज्ञायक, लिखा ना, ज्ञायक जानो आत्मा को। अब जिसके लिंगों के द्वारा, अब जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा, अब जिसके का अर्थ जिसके नहीं है, अब क्या बताऊं जिसको है, ये भाषा की कमजोरी है। अब तुम जिसके लगा दो माने जो उसको, जिसके माने अपन कहते हैं ना उसके, कि तुम्हारे यहां क्या है। तो भगवान आत्मा को, आत्मा भगवान आत्मा में जो जानने की प्रक्रिया होती है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती है, ये बताने के लिए जिसके शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत में यश लिखा होगा तो जिसके हो गया, झगड़ा कहता है ना। देखो संस्कृत में यश है ना, ना लिंगई इंद्रियई ग्राहकताम मापन्नम ग्रहणम यश है, ये यश का अर्थ जिसके किया है। तो अलंकरण के दो अर्थ हो गए, कौन कौन से अर्थ हो गए श्रीपाल? यदि इस कैसेट से पूछूं तो ये बता सकता है, तू चेतन है, शास्त्री है, जैन दर्शनाचारी है, और क्या क्या है, पहला अर्थ यह है कि भगवान आत्मा को जानने का जो काम करना है उसमें उसे इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इससे सिद्ध होता है भगवान आत्मा अतिंद्रिय ज्ञानमय है, भगवान आत्मा इंद्रिय ज्ञानमय नहीं है, है ना। एक पहला पहला अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ क्या है कि भगवान आत्मा को जानना हो तो ये इंद्रियां किसी काम आएंगी नहीं। सरदार पटेल गृह मंत्री बन गए थे भारत के, और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि सारी जो स्टेट थी वो भारत में शामिल कैसे हो, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते एक बदमाशी करके गए थे कि हर एक को आजादी दे के गए थे कि जिसको हिंदुस्तान में शामिल होना हो वो हिंदुस्तान में शामिल हो, जिसको पाकिस्तान में शामिल होना वो पाकिस्तान में शामिल हो, और जिसको आजाद रहना हो वो आजाद रहे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। अब ये झगड़ा जड़, अब हर एक आदमी सोचे कि बहुत सोचने के मैं तो आजाद रहूंगा, बहुत सोचने के मैं तो पाकिस्तान के साथ, हैदराबाद सोचे मैं पाकिस्तान के साथ रहूंगा, अब है तो हिंदुस्तान के बीच में, अब पाकिस्तान के साथ रहेगा। जैसे पाकिस्तान के दो टुकड़े अलग अलग हुए ना, बांग्लादेश के दूर दूर, اگر ہندوستان بھی ایسا ہو جاتا بیچ میں پاکستان آ جاتا. کیوں اب کر گئے تو چلے گئے, یعنی نہیں مانتے تھے تو وہ جاتے نہیں تھے, ماننی پڑی. تو سردار پٹیل کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان سب کو تم سمجھا سمجھو کے ڈانٹ کے دھمکا کے کیسے بھی کر کے ان سے لکھوا کے لوگ تم انڈیا میں شامل ہو. تو یہ بھرت پور ہے نا ہمارے جے پور کے پاس میں, وہاں کا راجا کا نام تھا بچو سنگھ, راجپوت راجا تھا. وہ کہا کہ نہیں میں تو آزاد رہوں گا, میں تو ایسا رہوں گا, میں تو نہیں جاؤں گا, پاکستان میں جانے کی تو کہہ نہیں سکتا تھا. میں نے کہا میں نہیں کرتا سائن. حیدرآباد والے نے کہا میں نہیں کرتا سائن. گوالیئر والے نے کہا میں نہیں کرتا سائن. تو گاندھی جی کا کیس ہو گیا نا, تو بلا کے کہا کہ ایک کیس بس تمہارے ماتھے پر ہے, کرنا کیا نہیں کرنا, نہیں تو کل تم گرفتار کر کے جیل میں ڈال کے پھانسی پہ چڑھو گے. تو انہوں نے فٹافٹ جان کر دی. اب اس سے بچے سے بھی دیکھا تو کہا میں سوچتا ہوں, میں سوچتا ہوں, میں سوچتا ہوں. وہاں بلایا دلی میں اور اس سے کہا میں سوچتا ہوں. تو اس کے سامنے چاروں طرف سینا لگوا دی اور انہوں نے کہا سوچ لے 24 گھنٹے تو جتنا سوچنا ہے, یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا. اور وہاں جا کر کے بھرت پور میں آ کر کے ایک عام سبھا کی سردار پٹیل نے, اور اس سبھا میں یہ گھوشنا کی کہ یہ بھنگیوں کی جھاڑو کام آئے گی لیکن راجپوتوں کی یہ تلوار اب زندگی میں کبھی کام نہیں آئے گی. کیا میڈم جی, بھنگیوں کی جھاڑو تو کام آئے گی کیونکہ دیش کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ تلوار اب جنگ کھانے والی ہے, یہ کبھی کام نہیں آئے گی. اگر انہیں یہ معلوم پڑا انہوں نے چپ سہن کر دی. انہیں بتا رہے ہیں کہ تو اندریوں کا غلام ہے, تو کہ تو جاننے کے کام میں بھی تجھے اندریوں کی ضرورت نہیں ہے, اور سو کو جاننے کے لیے بھی اندریوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ گرہن کا ارتھ ہے. تو ایک پہلا ارتھ ہو گیا پر کو جاننے میں اندریوں کی ضرورت نہیں ہے, اور دوسرا ارتھ ہو گیا سو کو جاننے میں اندریوں کی ضرورت نہیں ہے. دو ارتھ ہو گیا, ابھی تو یاد رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اب تیسرا انمان دوارا لنگ مانے انمان, تیسرا کیا ہے دیکھو جو پڑھتے ہیں آپ, گراہک جس کے لنگوں کے دوارا ارتھات اندریوں کے دوارا گرہن نہیں ہوتا وہ الگ گرہن, مانے تو جاننے کا کام اندریوں کے دوارا نہیں کرتا. اس پرکار آتما اتندری گیانمے ہے, اس کی پراپتی ہوتی ہے. اب اوپر تو کہا تھا گراہک گیاہک, اور نیچے کہا گراہی گے, بدل گیا, کیونکہ آتما خود گئے ہے. جس کا لنگوں کے دوارا اندریوں کے دوارا گرہن جاننا نہیں ہوتا وہ الگ گرہن ہے. اب جس کا جاننا نہیں ہوتا اور جو نہیں جانتا, ایسا آسن انتر آیا ہے بھاشا میں, اتنے اسپشٹ شبد نہیں ہے جو آپ ایسا ارتھ سمجھ سکیں. اس پرکار آتما اندری پرتس کا وشے نہیں ہے, اس ارتھ کی پراپتی ہوتی ہے. اب جیسے دھوئیں سے اگنی کا گیان گرہن ہوتا ہے, اسی پرکار کسی لنگ دوارا ارتھات اندری گم میں لنگ دوارا جس کا گرہن نہیں ہوتا وہ الگ گرہن ہے. یہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ لنگ مانے چند, تو دنیا میں پروت پہ اگنی ہے. اب یہاں سے اپن وہ پروت پہ اگنی دکھائی دیتی نہیں ہے, لیکن اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو وہ آکاش میں اوپر دھواں دکھائی دیتا ہے. تو دھواں دکھائی دیتا ہے تو جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں اگنی اوشیہ ہوتی ہے. تو ایسے ہی آٹھ لنگ مانے انمان, جیسے انہیں انمان سے جانا نا کہ وہاں اگنی ہوگی, تو ایسا کوئی چن ہے کہ جسے دیکھ کے ہم انمان کر لیں کہ یہاں آتما ہوگا. وہ چن کیسا ہونا چاہیے اہم چند جو اندریوں سے دکھائی دے, جیسے دھواں اندریوں سے دکھائی دیتا ہے نا, وہ اندری گیان پر جم رہا ہے سست, اور گرو اندری گیان پر سے اسے ہٹانا چاہتے ہیں کون دن سجے جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, سیدھا ہم جانے آتما کو اندریوں سے, لیکن آتما کا کوئی چن جیسے اگنی میں سے دھواں نکلتا ہے کچھ نکلتا ہو آتما سے میں سے ایسا, اور وہ ہماری آنکھ سے دکھ جائے اور اس سے ہم جان لیں کہ یہ آتما ہے, تو इंद्रियों से दिखाई देने वाले चिन्ह को देखकर फिर अनुमान से आत्मा का ज्ञान करें, ऐसा भगवान आत्मा है, ऐसा कोई चिन्ह है कि नहीं है, उसका नाम तीसरा अर्थ हो गया। इंद्रियों पर चल रहा है मार, बस पहले मैं सीधा इंद्रियों से नहीं जानता, सीधा इंद्रियों से नहीं जाना जाता, और तीसरे में इंद्रियों के द्वारा कोई चीज दिखाई दे और वो चीज आत्मा के बिना नहीं हो सकती हो, तो उससे मैं आत्मा का अनुमान लग लूं। इंद्रिय जन्य चिन्ह के द्वारा आत्मा का अनुमान किया जा सकता है कि नहीं, कि नहीं किया जा सकता, ये तीसरा अर्थ हुआ अलिंगन का। तीन अर्थ हो गए कि नहीं, कल पूछ लूंगा। देखो माताएं बहने बताती हैं कि आदमी बताते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री की भक्ति इससे बड़ी नहीं है और गुरुदेव श्री का परिचय इससे बड़ा कोई परिचय नहीं है कि उनने जो तत्व ज्ञान हमें बताया वो तत्व ज्ञान को हम समझें और जन जन तक पहुंचे।